ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शन्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 11 मेरे पीछे धराइए। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समानतम यतेऽपि गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुवामिनः। एतत् यह सर्वं सारे गृहस्थस्य गृहस्थ का समानातम वर्णित यते अपि यहाँ तक कि सन्यासी का गुरु वृत्ति है गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए विकल्पेना विकल्प नहीं है गृहस्थस्य गृहस्थ का ऋतुगामिनः प्रजनन के लिए ऋतुकाल के समय ही मैथुन करना। तात्पर्य पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की कभी कभी ये गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हरेक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने की कठोर वर्जना है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेश अनुसार ही स्थित संभोग में निरक्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे गुरु व्रति विकल्पेना। गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ विषय जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में हुई है। धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि। धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना विषय जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में स्त्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश ना हो तो गृहस्थ ऐसा ना करे। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहा करता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि चाहे जितनी बार विवाह करके स्वेच्छापूर्वक विषय भोग में रत हो। यह एक आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्गदर्शन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है तो गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको शरण नहीं मिल पाती। यस्य प्रसादा न गति कुतोपी, गुरु के आदेश के बिना ग्रस्त को भी विषय जीवन में अनुभक्त नहीं होना चाहिए। ओम अजानतिमरुंधस्य ज्ञानाञ्जनशरकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपः कदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धज्ञातं नितन्दं सजीवम् साजवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे भगवानी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। सारे नियम तथा विधान ग्रस्त तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु प्रजनन के लिए ग्रस्त को उपयुक्त अवसर पर मैथुन करने की अनुमति प्राप्त करता है। चार आश्रमों की चर्चा हो रही है, पूर्ण समाज, चार आध्यात्मिक वर्ग। चार आश्रम हैं, चार आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु को 25-25 वर्ष के हिसाब से चार आश्रमों में बांटा गया। तो ब्रह्मचारी को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद अगर वो चाहे तो, कंपल्शन नहीं है, चाहे तो गृहस्त में प्रवेश कर सकता है, बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है? परमिटेड बाय हिज गुरु, गुरु की परमिशन से। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि गृहस्थ जो है उसके क्या क्या क्वालिटी है, गृहस्थ के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किसको हम एक अच्छा गृहस्थ कह सकते हैं। तो उल्लेख आता है भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नाम संति सहस्त्र शहर अष्पत्यात्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेरी नाम। हे सम्राट, भौतिक जगत में अति आसक्त व्यक्ति जो जीवन के तत्व ज्ञान सभी रूपी नेत्र से हीन है एवं अंधे हैं, उनके पास दिन भर कहने सुनने के लिए बहुत सी सांसारिक बातें पड़ी रहती हैं। गृहस्थ में और ग्रह मेदी में दो शब्द यहां इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों का भेद जो है उसकी चर्चा होगी। तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के पहले श्लोक में कपिल मुनि कहते हैं, अथा यह गृह मेदियान धर्मानि माप संग्रहे कामम अर्थम च धर्मानि स्वान लोके भूय विपर्तितान। कपिल भगवान कह रहे हैं, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता है, इस तरह आर्थिक विकास तथा इंद्र वृत्ति की इच्छा पूर्ति करता है, वह पुनः इसी तरह कार्य करता रहता है। तो प्रश्न यह है कि ग्रह मेधि और गृहस्थ में भेद क्या है। एक, ग्रह मेधि किसे कहते हैं और गृहस्थ किसे कहते हैं? दो शब्द बनाए गए तो क्यों बनाए गए, इनमें भेद क्या रखा है? दोनों शब्दों में एक पार्ट कॉमन है, ग्रह, ग्रह मेधि और गृहस्थ, तो भेद क्या है दोनों के अंदर? थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ी आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ा और आगे आ जाइए। दोनों में अंतर क्या है? ग्रह मेधि और गृहस्थ, क्या भेद है? यस प्रभु, भौतिक जगत में मस्त रहता है, मोटी बात यह है, यही कही ना बात सारा लोगों लगा यह है कि ग्रह मेधी जो है भौतिक जगत में मस्त रहता है। यू वांट टू से समथिंग? प्रभुपाद इसको डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं कि ग्रह मेधी का लक्ष्य होता है कि उसके केंद्र में पत्नी और परिवार रहता है, और गृहस्थ के केंद्र में भगवान रहते हैं। ये सिर्फ डिफरेंस, ग्रह मेधि के केंद्र में पत्नी और परिवार रहता है, उनका जो कार्य है, उनका जो जीवन है, वो फैमिली मेंबर्स के, परिवार के लोगों के बेनिफिट के लिए, और इस कार्य करने के लिए दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दे आर एनवियस। नंबर दो, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? भगवान, उनके ज्ञान के बारे में वो अंधे हैं, ब्लाइंड टू द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ। भगवान का ज्ञान नहीं है, उस मामले में वो अंधकार में है, अंधे हैं। उनका जो मुख्य लक्ष्य रहता है वो रहता है कि मैं किस तरह अपने परिवार के लोगों के साथ आनंद प्राप्त कर सकूं, क्योंकि उसका सेंटर अपना परिवार है, उसका सेंटर अपनी पत्नी है, इसलिए वो दूसरे ऐसे लोग जो ग्रह मेधी हैं उसके साथ उसकी टर्म्स, उसका व्यवहार, एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, ईर्ष्या का रहता। एक कॉमन कहावत है, हम ऐड देखा करते थे, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, रिंग का ऐड आया करता था, तेरे परिवार की तरक्की मेरे परिवार से ज्यादा क्यों है, तेरा परिवार जो है वो मेरे परिवार से ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, उसके मन में हमेशा ये ईर्ष्या रहती है। वो समाज के प्रति कार्य करता है, नेशन के प्रति कार्य करता है, किंतु भगवान के प्रति उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। पॉलिटिकल, साइंटिफिक, सोशल, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर तो उसका ज्ञान रहता है, इनके प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होना है उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इल्यूजन डिवाइन मटेरियल नेचर सेल्फ रियलाइजेशन को भूले हुए, परंतु भौतिक प्रकृति के बारे में वो जागृत है, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु माया ने उनके ज्ञान को ढका हुआ है। माया अपहृत ज्ञाना, माया उनके ज्ञान को हर लेती है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए कि जैसे किसी पशु को आप एक रस्सी से बांध देते हो तो अपने ही खूंटे के चारों तरफ जो है वो घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह जो ग्रहवेदी है उसका खूंटा है पत्नी और परिवार, उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसकी सारी सोच, उसके सारे थॉट्स, सारे विचार उनके प्रति केंद्रित होते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। इसको कहते हैं ग्रहवेदी आश्रम नहीं, ग्रहवेदी जो है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। अब यहां चर्चा आएगी इसके बाद कि आश्रम और घर में क्या फर्क है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, आश्रम में और एक साधारण घर में क्या अंतर है। गृह वेदी के लिए पांच चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसको प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है प वर्ग। जब हम हिंदी की व्यंजन माला पढ़ते हैं का खा गा, उसमें जो पा वाली लाइन है, इस पांच इस वर्ग कहलाते हैं, पा वाली लाइन को पवर कहते हैं। तो पा वाली लाइन क्या है? पा फा बा भा और मा। पा से क्या अर्थ आता है? पा से क्या निकलता है? परिश्रम करता है, परिवार को चलाने के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, संतान को प्रसन्न करने के लिए वो बेहिसाब परिश्रम करता है। कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, इसका उत्तर है फा। फा का मतलब है फेना। जैसे जब घोड़ा बहुत तेज भागता है, थक जाता है, तो मुख से फेना निकलना शुरू हो जाता है, इसी तरह जब जो है ग्रहवेदी बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, तो फेना निकलना शुरू हो जाता है, अर्थात तब वो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। बा से आता है बंधन। ये जो परिवार के प्रति उसकी सोच है, परिवार के प्रति जो उसके कार्य हैं, जो उसको संसार के अंदर बांधे रहते हैं, कैसे बांधते हैं? पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के भेद में लगा देते हैं। भाव, भाव से आता है भय। उसे हर वक्त डर रहता है। किस बात का डर है? कि मेरे पास जो भौतिक आनंद की वस्तुएं हैं वो छिन न जाए, कोई ले न जाए, उनमें कमी न पड़ जाए, चोरी न हो जाए, लॉस न हो जाए, या मिली बंद न हो जाए। हर वक्त वो भौतिक सरकार में आनंद के प्रति इतना जागृत है कि उसको डर लगा रहता है कि मेरा भौतिक आनंद जो है कहीं किसी वजह से कम ना हो जाए। और अंत में क्या है? मां। मां से आती है मृत्यु। ग्रहवेदी व्यक्ति का भौतिक संसार के अंदर अभी आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है, इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहता। कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं, वो आर्ट है। किस चीज के लिए आर्ट है? कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, दैट इज आर्ट ऑफ डाइंग, लिविंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग तो बेस है, बेसिक्स है, ये कृष्ण के भाव में रहना है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के प्रति समर्पण होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ग्रंथ पढ़ने हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पूजा करनी, अर्चना करनी, जप करना, कथा सुननी, ये सारे बेसिक्स हैं। परंतु किसके लिए तैयार करती है? कृष्ण भावनामृत में आने का अर्थ है आपकी तैयारी की जा रही है कि मेरे को मृत्यु प्राप्त करने के बाद कहां जाना है, मुझे 84 लाख योनियों के चक्र में आना है या उनसे छुटकारा पाके भगवान के धाम चले जाना। तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है कृष्ण भावनामृत, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग तो बेसिक से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बेसिकली प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन है आर्ट ऑफ डाइंग। तो जो ग्रह मेदी है उसका जो लक्ष्य रहता है कि मुझे मृत्यु प्राप्त करनी, नहीं करनी भाई कैसे करनी, मैं तो जीना चाहता हूं। राजा ययाति ने अपने पुत्रों से पौरुष उधार मांगा था, किस लिए, कि अभी मेरे जीवन के अंदर मेरा जो इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण है समाप्त नहीं हुआ, मैं अभी अपने इंद्रिय भोगों को और एंजॉय करना चाहता हूं, तो एक पुत्र मुझे अपना पौरुष दे दे। सबने मना कर दिया, सिर्फ पुरु ने हां कर दिया। साइंटिफिक प्रोसेस था, गुरु शुक्राचार्य थे, सर्जरी हुआ होगा, जो भी हुआ उनका जो है पौरुष एक दूसरे का अदला बदली हो गया। जब उनका मन इंद्रिय भोगों से भर गया तब उन्होंने फिर से पौरुष को वापस किया, अदला बदली करी। राजा शांतनु जब सत्यवती पे मोहित हो जाते हैं उस उम्र के पड़ाव पे, जब उनका पुत्र देवव्रत इटसेल्फ यंग विवाह योग्य है, तो वो कहते हैं कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं क्योंकि मेरे अभी इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। सो देवव्रत जाके सत्यवती से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं आपको अपनी माता का स्थान देना चाहता हूं और मेरे पिता से विवाह स्वीकार करिए। तो उसका जो पिता है जिसने पाला है कहता है कि एक ही शर्त है, पहली शर्त यह है कि इसी के औरत से जो पुत्र होगा वही राजगद्दी का वारिस होगा, तुम बड़ी संतान हो, गंगा पुत्र हो, तुम राजगद्दी पे बैठोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पिता के साथ नहीं करूंगा। उन्हें कहा ठीक है, मैं कमिट करता हूं कि मैं राजगद्दी का आकर्षण समाप्त कर दूंगा, मैं राजगद्दी के लिए अपने आप को नहीं मांगूंगा उनसे, मैंने जो है राज्य का लोभ छोड़ दिया। फिर वो पिता कहता कि अगर तुम्हारी संतान वो तो राजगद्दी मांग सकती है, तो मेरी पुत्री की औरत से जो परिवार चलेगा, जो वंश चलेगा, वो तो राजगद्दी का मालिक नहीं होगा। तब देवव्रत ने एक कठोर प्रतिज्ञा करी, कठोर मतलब भीष्म, क्या प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। किसके लिए हुआ, शांतनु के भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण के लिए, वो उसको छोड़ नहीं पाए, ऐसा हमें इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। जो ग्रह मेदी है वो अमीर हो जाएगा, पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, सोशली बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, समाज में उसकी बड़ी इज्जत होगी, परंतु उसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण जीरो मात्र और संसार के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा। तो प्रहलाद महाराज जो है इसी के पिछले 5वें अध्याय में कहते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्विनम, क्या है उसको बार बार चबाना। बार बार चबाने का अर्थ क्या है कि ग्रह मेदी जो है वो बार बार जन्म धारण करता है, फिर जन्म मिलता है भोगता है, फिर जन्म धारण करता है फिर भोगता है, फिर जन्म धारण करता है फिर भोगता है, अर्थात वो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अब आती है छोटी सी चर्चा कि आश्रम और घर दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो प्रभुपाद जो है लिखते हैं आश्रम का अर्थ है वो स्थान जहां पर स्पिरिचुअल कल्चर को कल्टीवेट किया जाता है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है, वो आश्रम कहलाता है। और जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ऐसे कुछ और भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो उन नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, जिस घर के अंदर उन नियमों के अनुसार जीवन चलाने वाले रहते हैं वो घर घर ना होकर आश्रम हो जाता है, उसको आश्रम कहा जाता है। अब फिर लिखते हैं प्रभुपाद की साधारण घर का मतलब है कि वहां पर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं है, नियम नहीं है। जो आपके जीवन को व्यवस्थित करते हैं वो नियम नहीं है, तो घर है। और जहां पर सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है, कृष्ण भावनावृत का विकास होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, आदर है, मान है, सम्मान है, पूजा है, अर्चना है, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो सारे के सारे कार्य होते हैं, वो स्थान जो है उसको आश्रम कहते हैं। अब वाइफ का कर्तव्य क्या है गृहमेदी और गृहस्थ के जीवन में, दोनों में क्या भेद होना चाहिए? प्रभा लिखते हैं कि पत्नी जो है वो पति के बराबर उम्र की होनी चाहिए, साल दो साल फर्क हो सकता है, ज्यादा नहीं। उसी की तरह का चरित्र होना चाहिए, वैसे ही गुण होने चाहिए। परंतु जब हम धर्म पत्नी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? नंबर एक कि वो धर्म के अनुसार आपकी पत्नी का पद स्वीकार किया है उसने। नंबर दो, वो पति को धर्म के मार्ग पे चलने में सहायता देती है। और धर्म का मार्ग क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, पत्नी जब उसमें पति की सहायता करती है तो धर्म पत्नी कहलाती है। एक घर के अंदर पति का कर्तव्य जो है वो आनंद नहीं, तृप्ति, इंद्र तृप्ति नहीं है। पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए अपना भी आध्यात्मिक विकास करता है, पत्नी का भी आध्यात्मिक विकास करता है, और बच्चों का, संतान का भी आध्यात्मिक विकास करता है। सबका आध्यात्मिक विकास जो करता है वो पति है, धर्म से पति है। धर्म पत्नी शब्द इस्तेमाल करते हैं, धर्म से भी पति, पत्नी के ये धर्म से मेरा पति है। तो वो आध्यात्मिक विकास करने के अंदर पत्नी का और बच्चों का सहयोग करता है। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर है गृह में स्थित होने का प्रयास करने वाला। गृह मतलब घर, घर मतलब आवर ओरिजिनल होम। तो हम लोग कहां से आए? ममय वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, हम लोग कहां से आए? भगवान के धाम से। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम में स्थित होने के लिए प्रयास करता है, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, वो व्यक्ति रियली में ग्रस्त है। गृहमेदी का अर्थ है कि वो पत्नी को पत्नी स्वीकार करता है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब चर्चा आती है थोड़ी सी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में। वो बात जो लिखते हैं मटीरियल वर्ल्ड के अंदर प्रेम नहीं है, देयर इज नो लव। स्त्री और पुरुष दोनों जो है इंद्र तृप्ति के प्रति, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। एक मायावी प्यार, एक झूठा प्यार जो है उसकी रचना होती है, और पति पत्नी से आकर्षित हो जाता है, पत्नी पति से आकर्षित हो जाती है। परंतु प्रेम का असली केंद्र क्या होना चाहिए? प्रेम का असली केंद्र होना चाहिए कृष्ण। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, प्रेम का केंद्र होना चाहिए कृष्ण। अब आती चर्चा प्रवृत्ति मार्ग की और निवृत्ति मार्ग की। दो शब्द हैं, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है और निवृत्ति का अर्थ क्या होता है। प्रवृत्ति मीन्स कार्य, प्रवृत्ति मीन्स कार्यों में लग जाना, निवृत्ति मीन्स कार्यों से छुटकारा। तो किस प्रवृत्ति के, अप्रवृत्ति मार्ग के भी दो डिवीजन है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। जब भौतिक डिवीजन के अंदर जब भौतिक संसार के अंदर प्रवृत्ति की बात करते हैं, जिसका मतलब है व्यक्ति जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षित होकर भौतिक संसार को एंजॉय करने के कार्य करता है, तो भौतिक संसार के प्रति उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और जब जो है भौतिक संसार से छुटकारा पाना चाहता है तो भौतिक संसार से निवृत्ति हो जाती है। तो आध्यात्मिक संसार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक संसार में प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण हो जाना, कृष्ण के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है, और कृष्ण की सेवा न कर पाना कृष्ण के प्रति निवृत्ति हो जाती है। तो व्यक्ति को यह देखना है कि उसे भौतिक संसार के अंदर प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण करना है या निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करना है, कौन से मार्ग को ग्रहण करना है, ये उसको समझ में आना चाहिए। अब इसमें जो है गुरुपाद जी बात कर रहे हैं गर्भाधान संस्कार की। कि गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थी विषय जीवन स्वीकार कर सकता है। और नीचे कहा है गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले। षोडश संस्कार जो है उनमें एक संस्कार है गर्भाधान। बहुत डिटेल्स हैं इसके अंदर, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इट इज ए सीक्रेट टॉपिक। तो उसकी जो है जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको इसके बारे में जानना है, वो बाद में इसके बारे में चर्चा कर सकता है। परंतु वो बात जो लिखते हैं कि फिजियोलॉजिकली मेडिकल साइंस में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है शरीर का रचना, शरीर कैसे बना हुआ है, उसके अंग प्रत्यंग अवयव कैसे हैं। दूसरी है फिजियोलॉजी, जो अंग प्रत्यंग कार्य कैसे करते हैं, उनका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। तो यहां जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन के अलावा सेक्स लाइफ जो है दैट इज लाइक ए सुसाइड। किनके लिए? जो अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं, आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और धर्मशास्त्र के अंदर ऐसा उल्लेख आता है कि व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु के बाद सेक्स लाइफ को संपूर्णतः त्याग देना चाहिए। नो सेक्स लाइफ आफ्टर दैट। इसमें जो है बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब की जो है सपोर्ट होती है सेमिनल फ्लूइड से, उसको जो है प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। परंतु इसमें जो है बहुत सारी कंसिडरेशन है गर्भाधान के अंदर, बहुत लंबा टॉपिक है, कौन से अप्रोप्रिएट टाइम है, बिहेवियर कैसे होना चाहिए, गर्भाधान के लिए क्या नियम है, गर्भाधान क्या, एक गर्भाधान बेसिकली क्या है, प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है। रोबर कहते हैं कि जब संतान पैदा होनी है तो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए व्यक्ति को, पति पत्नी को पहले स्वयं को प्योरीफाई करना है, तब मिलन होना है, तब संतान होनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले प्योरिफिकेशन चाहिए। तो प्योरिफिकेशन करने के लिए उसमें उन्होंने दो चीजें बताई। एक है कि आप गर्भाधान, जैसे पहली बार विवाह के बाद गर्भाधान कब होना चाहिए, कितने दिन बाद होना चाहिए, क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है वगैरह, सारी चर्चाएं गर्भाधान संस्कार नामक ग्रंथ में है। एक बार होना चाहिए या हर संतान से पहले गर्भाधान होना चाहिए? अगर आपने एक संतान प्राप्त कर ली है तो दोबारा दूसरी संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आपको गर्भाधान जो है उसका दोबारा से नियम पालन करना चाहिए, या एक बार कर लिया है वो एनफ है? इसकी भी चर्चाएं आती है, इसकी भी डिस्कशन आती है। किस समय होना चाहिए, पत्नी के साथ कब संबंध होना चाहिए, बहुत डिटेल चर्चाएं हैं। कौन कौन सी तिथियां, कौन कौन से दिन जो हैं अशुभ हैं, कौन से दिन शुभ हैं, कौन सी जगह शुभ है, कौन सी जगह अशुभ है, इन सब की चर्चा है। तो इसके लिए अपने शिक्षा गुरु से या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मुझे गर्भाधान के बारे में ज्ञान दीजिए। सेशन है 2 घंटे का, लोग आते हैं मेरे पास, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बताते हैं उनके, तो डिस्कशन होता है। उसके बाद आपको जो है कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त होने का चांस है। क्योंकि जो आपका सिंचन है, जो जो रज का धातु के साथ जो संयोग है, उस संयोग होने से पहले कॉन्शियसनेस बढ़िया होनी चाहिए। अनलेस कॉन्शियसनेस ठीक नहीं होगी, तब तक जो है आप प्रॉपरली जो है बढ़िया कृष्ण भावना भावित संतान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो यहां चर्चा हो रही है कि चार आध्यात्मिक वर्गों के अंदर जो गृहस्थ आश्रम है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके नियमों का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सेक्स लाइफ है उसकी प्रस्तुति ना तो ब्रह्मचर्य में है, ना वानप्रस्थ में है और ना ही संन्यास में है। पर गृहस्थ के अंदर भी अनलिमिटेड फ्री नहीं है, रेगुलेटेड है। वो रेगुलेशन कैसे करना है इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वन शुड नो दी सिस्टम, उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे, उसकी चर्चा एक सीक्रेट चर्चा है, प्राइवेट चर्चा है, उसका ज्ञान यहां नहीं दिया जा सकता, परंतु उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हाउ डू वन लिव इन गृहस्थ लाइफ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी।